5607 5000 इंश्योर प्रो के फजल वदूसा। चलिए ना, टॉप ऑफ द आवर का ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जो है शाजिया मलिक साहब अपनी गर्मा गर्म और खट्टी मीठी खबरें लेकर आ जाएंगी और 5:30 बजे तकरीबन 5:35 पे हम स्पोर्ट्स का सेगमेंट करेंगे। 6 बजे के करीब आसपास अजान मगरिब के बाद हम आपको इम्तियाज गुल साहब से मिलवाएंगे जो गारफा मुजफ्फर साहब ने उनसे बातचीत की है। 7 बजे आप सुन सकेंगे भूली बिसरी यादें जो कि लियाकत मलिक साहब प्रोड्यूस करते हैं, तो 7 बजे आपने देखना और सुनना नहीं भूलना। तो आइए टॉप ऑफ द आवर का ब्रेक लेते हैं। हमारा नंबर 416-620-1778 और टेलीफोन पर हमारा रेडियो सुनने के लिए 647-872-4900 647-872-4900।
यू आर लिस्निंग टू WTOR 770 AM यंगस्टाउन टोरंटो।
Sabskutur and GTA Ramadan Festival in collaboration with National Zakat Foundation presents Ronak-e-Ramadan and Jashn-e-Chandra. Mark your calendars. March 15th and 16th, March 28th, 29th and 30th, Red Rose Convention Center, Mississauga. Be among the first 200 families and receive a free gift hamper. Over 3,000 giveaways throughout the day. Explore our grand shopping bazaar with top brands and exclusive Ramadan collections. Join us for iftar and sehri and experience Ramadan like never before. Get your free tickets today. Don't miss out. Come celebrate Ramadan with us.
ट्रकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो, ट्रक जिद्दां दा भी चलाउंदे हो मैनुअल जा ऑटोमैटिक, क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो। ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब लॉ जी तीजी लोकेशन भी खोलती है, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। आहो जी, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप, 519-622-0660 या quicktrucklube.com। QTL, बिकॉज वी केयर।
अपनी कम्युनिटी का सब तो वड्डा, वधिया क्वालिटी वाला ते सब तो पुराना सोडी फर्नीचर हर घर की पहचान बन चुकी है।
ओ फिर बने भी क्यों ना, क्योंकि बेडरूम सेट, सोफा सेट, मैट्रेसेस, डाइनिंग टेबल, डेकोरेटिव आइटम्स, गल कीजिए सारे घर का फर्नीचर वधिया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस ते मिल जाता सोडी फर्नीचर तो। 3 साल लई 9 ब्याज,
142 कैनेडी रोड, ब्रैम्पटन, 9058747471।
मेरी पूरे साल की सेविंग $400 हुई है।
मेरी सेविंग $350,
मेरी सेविंग सिर्फ $100
और मेरी सेविंग सबसे ज्यादा हुई है, मैंने सेव किए हैं $1,775।
क्या चमत्कार किया, मुझे भी गुड़ सिखाओ ना।
भाई बात सादा सी है, हमारे पास 2 गाड़ियाँ और 1 घर है और इन सब की इंश्योरेंस मिलाकर मैंने जबरदस्त सेविंग की है और ये जादू किया है ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बादशाह ने। आप भी अपनी गाड़ी और घर की इंश्योरेंस में खूब सेविंग कर सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन अप्लाई, ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बादशाह, 6472903773।
इस रमजान में अपने प्यारों के साथ शाही अफ्तार बफे एंजॉय करें सिर्फ नान कबाब पर। ऑल यू कैन ईट फीस्ट, एपेटाइजर्स में शामिल गर्मा गर्म मंटू, समोसे, बुलानी, सूप, गार्लिक नान, इसके अलावा सिजलिंग शामी कबाब, तंदूरी कबाब, चपली कबाब, ऑथेंटिक कोफ्ता एंड सब्जी कोरमा, खुशबूदार शाही कबूली और जमारूद पुलाव, मीठे में पिन्नी और गर्मा गर्म करारी जलेबी। स्टार्टिंग फ्रॉम मार्च 5th, एवरी इवनिंग एट 5042 सैटेलाइट ड्राइव, मिसिसागा एंड 1780 मार्कम रोड, स्कार्बरो। अ टेस्ट ऑफ होम सर्व विद लव। सीट्स आर लिमिटेड, रिजर्व नाउ एट नानकबाब.com। नान कबाब, वेयर रमदान फील्स लाइक होम।
वेलकम बैक तमाम सामने जो हमें सुन रहे हैं 770 AM डायल पर प्रोग्राम साजो आवाज, मैं हूं आपका होस्ट आमिर अहमद और अब हम आपको ले चलते हैं स्टूडियो में जहां न्यूज रूम न्यूज रूम, हाँ न्यूज रूम सुबह की, सारी सुबह से लेकर अब तक की, यानी अब तक जब तक नहीं सुनाई है ये सब ताजी हैं। उसके बाद का मुझे नहीं पता कि इस पर दोबारा पानी डाल के पेश किया जाएगा कि नहीं। वो तो ना सब्जी वाला आता था, सुबह की सब्जियां लेके घूम रहा है, शाम तक आते हो पानी डाल डाल के उसको फ्रेश कर करके बेच रहा होता था। लेकिन बहरहाल ये फ्रेश खबर है, इसकी तो मैं गारंटी ले सकता हूँ। तो आइए शाज़िम मलिक साहब को खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
WS कैसे हो आज? तो बड़ा न्यूट्रल कलर पहन के आए हो, व्हाइट चंडी दिखा रहे हो, कह रहे हो मुझे मत छेड़ो।
नहीं नहीं, आज न्यूट्रल इसलिए है कि आज इलेक्शन डे है, किसी के साथ नहीं हूँ।
मैं उसके साथ हारेगा।
ये मैं आज इसीलिए व्हाइट पहन के आया, जो वो भाई ने बताया था ना, एक शख्स से इंटरव्यू होता है, कहते हैं आप किसको वोट देंगे, मुझे पता है वो जो शख्स हारेगा मैं उसको वोट डालूंगा। बंदे को पता भी है कि ये हारेगा फिर भी उसको वोट डालेगा, ये गुस्सा है
आपका,
ये गुस्सा है ना आप। तो ऐसे कई लोग होंगे जो कि मुझे डालने के बजाय आपको डाल देंगे।
मैं और मेरा बेटा जैसे एक दफा जो है कभी जब समर था थोड़ा सा, अक्टूबर के महीने की बात है, हम खड़े हुए हैं मूवी अंदर देखने के लिए जाने वाले, लेकिन हम बाहर ऐसे ही खड़े ना कोई डिस्कशन कर रहे हैं, तो एक लेडी आई है वो हमें देखती जा रही है, वो सिनेमा के बाहर, तो वो हमें पूछ रही है तुम मुझे क्यों देख रहे हो तुम लोग, व्हाट इज योर प्रॉब्लम।
अच्छा खुद देख,
हमें देख के कह रही है क्योंकि हम तो ऐसे सामने नॉर्मल खड़े हैं जैसे भी अंदर जा रहे हैं, तुम लोग मुझे क्यों देख रहे हो। हमने कहा हम तो नहीं तुम्हें देख रहे। कहते नहीं तुम दोनों की नजरें मेरे पे हैं, तुम लोग मुझे क्यों देख रहे हो, जाओ कहीं और जाके काम करो। मैंने कहा यार
मुझे तो आपको पता है सारी खवातीन देखती हैं। मैं तो आपको किस्सा बताया इस्लामाबाद एयरपोर्ट।
हाँ हाँ खूबसूरत आदमी,
मैं खुद परेशान था।
हाय
मतलब सोचो यहाँ से बंदा जाए घूमता फिरता इस्लामाबाद पहुंचे और इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे आपको अनजाना अनजानी है ये यहाँ घबराना पड़ता है। वैसे तो मैं नहीं घबराता लेकिन यहाँ उस वक्त मैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर घबरा गया था, वाकई घबरा गया था। मैं कहा ये अल्लाह ये तो मैंने कभी नहीं किया था, ऐसी से वादे नहीं किए मैंने कि मैं इस्लामाबाद आके मिलूंगा आपसे।
इतनी अच्छी किस्मत, इतनी खूबसूरत लड़की मिल रही है,
मैं चाहता हूँ ना हो तो अच्छा ही।
अच्छा अच्छा चलो ठीक।
तो ऐसे बहुत से मामलात होते रहते हैं,
मामलात होते रहते हैं, मामलात यहाँ पे लोगों के वैसे कुछ हो रही हैं।
लेकिन आज आपने वोट डाल दिया कि नहीं?
मैं तो लास्ट सैटरडे डाला था, मैंने आपको बताया था,
एडवांस वोटिंग में डाल दिया। और तमाम सामाई जो इस वक्त तक सुन रहे हैं और अभी तक आलसीपन दिखा रहे हैं, भैया
ना दिखाओ भाई, जाओ 9 बजे तक कर सकते हो,
9 बजे तक है तो वोट डालते हैं।
चलो जी हम खबरें अपनी शुरू कर लेते हैं। तो जनाब दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय राजा बादशाह जी। देखो जी साढ़े सिर्फ 400 बचाएं क्योंकि साढ़े नाल कोई दोस्ती नहीं, आमिर के नाल दोस्ती है। 1775 बचाएं, इसलिए आपने आमिर का नाम लेके जाना है। ऑल स्टेट के साथ हैं और होम और ऑटो इंश्योरेंस देते हैं, तो आपके बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं, आप उनके पास जाओ। और जनाब दो रेस्टोरेंट में अगर आपने एक दिन एक रेस्टोरेंट में दूसरे दिन दूसरे रेस्टोरेंट में खाना खाना है आपको, तो आप ऐसे चटा के दो जो रेस्टोरेंट्स हैं विलेज स्टेज के उस पर जाओ, एक है विशेष सागा में एक ओकविल में, एंजॉय का जाके मजा लें। वैसे भी अभी रमदान शुरू होने वाला है, अगर आपको कोई पकौड़े समोसे कुछ चाहिए आप जाके एडवांस में उठा सकते हो इससे पहले कि आपका अफ्तार खुल जाए, है जी। और डेंटिस्ट्री ऑन रिजवे, नया इनका डेंटिस्ट ऑफिस है डॉक्टर नाजिया रहमान का, जाओ अपने पीले दम चिटे कराओ, है जी, और खूबसूरत नजर आओ। और हमारे जो हैं अदनान अलवी साहब कहते हैं गरीब होकर रहने की जरूरत नहीं, अमीर होकर रहो, तो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज भी देते हैं और RESP भी देते हैं, तो लाइफ टाइम ग्रुप जो है उसके प्रेसिडेंट है, जाओ और बहुत सारे आपको सुविधाएं देंगे, हैं जी। और ना फटने वाले कपड़े सिर्फ मिलते हैं SPLN मके पे, इटालियन वूल के कपड़े हैं, तो इटालियन तो आपको पता है हर चीज जबरदस्त खूबसूरत होती है और स्टाइलिश भी है, तो आप जाके अभी सेल भी लगा हुआ है उनका, ब्रिटानिया रोड पे जो नया उनका है ना वो आउटलेट, तो आप जाएं उधर और आप एंजॉय का मजा ले सकते हैं। और हमारे सुल्तान भाई, वन एंड ओनली सुल्तान भाई, ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस पे होते हैं, बंडल डील्स देते हैं, आप जाएं। क्विक ट्रक ल्यूब, अगर आप चाहते हैं आपका जो ट्रक है वो फराटे भरे भागता फिरे सड़क पे, तो आप क्विक ट्रक ल्यूब पे जाएं, वहां पे जाके उनके अच्छे जेन्युइन ऑयल्स डलवाएं, तो फिर आपका जो टीरक है कभी खराब नहीं होगा, ठीक है जनाब। ओके अच्छा जनाब, सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं, आपको पता ही है कि आज जो है वोटिंग डे है यहाँ पे, लेकिन विंटर बहुत ज्यादा थी जाहिर है यानी कि बर्फ बहुत ज्यादा थी, है ना जी, तो बेताशा सर्दी थी, तो सर्दी की वजह से ये 100 ईयर्स में पहली बार हुआ है कि वोटिंग एक तो सर्दी के महीने में हो रही है और दूसरा जो है वोटर टर्नआउट इसी की वजह से कम रहा, क्योंकि बहुत सारा जो है एनवायरमेंट कनाडा ने इसके अंदर दिया हुआ था जो है वो हैवी स्नोफॉल का एडवाइजरी दी हुआ था। तो जो पोल्स थे वो खुल गए थे सुबह 9 बजे, सुबह 11 बजे जो ग्रीन पार्टी के लीडर है माइक श्राइनर, उन्होंने अपना जो गोल्फ सिटी हॉल है उसमें अपना डाला, वोट डाला 10:20 AM उससे पहले, यानी कि डकफोर्ड साहब जो है अपनी वाइफ कॉर्ला के साथ इटोबिको में अपना वोट कास्ट करने के लिए गए थे। फोर्ड साहब जो है उसके बाद अब जो नाइट इवेंट एक अटेंड करेंगे ट्रोनो के कांग्रेस सेंटर में, श्राइनर साहब जो हैं वो अपने कैंपेन ऑफिस में रहेंगे। एनडीपी के जो मेरिट स्टाइल्स हैं उन्होंने भी आज अपना वोट डाला, बाकी का दिन जो है वो जो वॉलंटियर्स और जो सपोर्टर्स हैं उनके साथ बीचेस ईस्ट यॉर्क में टाइम गुजारेंगी। बॉनी क्रॉवी साहिबा जो हैं उन्होंने भी अपना वोट आज सुबह डाला था और उसके बाद जो है अब बाकी का दिन जो है वो रहेंगी मिसिसागा कन्वेंशन सेंटर में, वहां पे एक इवेंट है वो देखेंगी, वहां से रिजल्ट्स जो है फॉलो करेंगी। आज जो है इलेक्शन डे है तो अब आपको जो बातें पता होने चाहिए क्योंकि अभी भी काफी टाइम है, तो हम आपको बता दें कि आपका एज जो है 18 या ओल्डर होना चाहिए, आप कनेडियन सिटीजन होना चाहिए, आप ऑन्टेरियन होना चाहिए, यानी कि बीसी से आके आप आके जो है इधर वोट डाल रहे हो, नहीं ऑन्टेरियन होना चाहिए आपको। और आपके पास वैसे तो एक इन्फॉर्मेशन कार्ड मेल पे आना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोगों को इस दफा नहीं मिला क्योंकि आपको पता ही है कि जो कनाडा पोस्ट था उसका बहुत सारा डिसरप्शन चल रहा था, उसमें बहुत सारी अभी भी चीजें फंसी हुई हैं। तो अगर आपको नहीं भी मिला है तो आप ऐसा मत करो कि मत जाओ वोट करने के लिए, कोई भी अपना आईडी लेकर जाओ आप, तो आप उनको वहां पर दिखाएंगे न तो वो आपको बताएंगे। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि इलेक्शंस ऑन्टेरियो के आप वेबसाइट पे जाएं, अपना आप पोस्टल कोड डालिए, अगर आप डालेंगे तो फिर आपको आपका राइडिंग मालूम चल जाएगा, राइडिंग मालूम चलेगा तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपके राइडिंग में आपके घर के पास कौन सा वाला ऐसा सेंटर है जिसमें आके के आप अपना वोट जाके डाल सकते हैं। तो ये बहुत सारे तरीके हैं, ये आप अपना सकते हैं। अच्छा जनाब, ये जो आज वोटिंग हो रही है यहां पे ऑन्टेरियो में 10 जो राइडिंग्स हैं वो बहुत क्लोजली मॉनिटर लोग करेंगे। एक तो मिसिसागा ईस्ट फुक्सविल ही है बॉनी क्रॉम्बी की, बॉनी क्रॉम्बी के सामने बहुत सारी मिसिसागा की रखी गई थी राइडिंग्स जिस वक्त इन्होंने एज मेयर ऑफ मिसिसागा छोड़ के और लिबरल पार्टी का हेड ये बनी थी, तो इन्होंने कहा कि मैं ये मिसिसागा ईस्ट फुक्सविल जो है इससे मैं करूंगी। अब इसके अंदर जो इनका मुकाबला बड़ा तगड़ा और इंटरेस्टिंग है वो सिल्विया गॉल्टेरी जो है, जो कि मदर इन लॉ है पैट्रिक ब्राउन की, उनके साथ हो सकता है। तो अब इनमें से कौन जीतेगा ये आपको जो है पता चलेगा। विंसर वेस्ट जो है दूसरी राइडिंग है यहां पे जो है पीसी वाले बहुत ज्यादा पुश कर रहे हैं क्योंकि इससे पहले जो है दो विंसर की इन्होंने जीती थी, अब वो चाहते हैं ये तीसरी भी राइडिंग जो है वो जीत जाए। यहां से लीजा ग्रेट्सकी जो है वो इसको होल्ड करती है राइडिंग को फॉर एनडीपी सिंस 2014, और अब लिबरल जो है उन्होंने विड्रॉ यहां से कर लिया था, तो मुकाबला जो है अब इनके और पीसी के बीच में है। ट्रोनो सेंट पॉल्स यहां पे ये बड़ा लिबरल स्ट्रांग होल्ड था लेकिन 2018 में एनडीपी ने इसको जीत लिया था। यहां से लिबरल्स ने अपना स्टार कैंडिडेट CP24 की जो एंकर है स्टेफनी स्मिथ उनको यहां से खड़ा किया है, तो देखेंगे अब कौन जीतेगा। किचनर सेंटर यहां पे ग्रीन्स जो है इन्होंने एक आपको पता है कि एक ही इनकी सीट थी, दूसरी जो सीट इन्होंने जीती थी यहां से जीती थी, फॉर्मर काउंसलर एशलिन क्लैंसी जो है वो 2023 में यहां पे ग्रीन्स की तरफ से जो है वो जीती थी, तो अब ग्रीन्स चाहते हैं कि अपनी ये सीट को जो है वो रखें। ये इन्होंने जीती थी फ्रॉम एनडीपी। बैरी स्प्रिंग्स वाटर ओरो मेडोंटे यहां पे आपको पता ही है कि पीसी पार्टी के डग डाउनी जो के जो है वो गवर्नर जनरल सॉरी अटॉर्नी जनरल जो है वो भी रहे हैं फोर्ट साहब की गवर्नमेंट में, 2018 से जीतते आ रहे हैं और अब जो है ये लास्ट टाइम इन्होंने हराया था लिबरल पार्टी की फॉर्मर जो बैरी मेयर थे जेफ लेमैन को, उनको सिर्फ 300 वोट से, तो अब फिर से बहुत ज्यादा यहां पे सख्त मुकाबला रहेगा। यॉर्क साउथ वेस्टर्न माइकल फोर्ड आपको बताइए है कि डग फोर्ड के नेफ्यू हैं लेकिन वो कह रहे हैं कि अब वो इलेक्शन सीक नहीं कर रहे हैं, उनका मुकाबला है फैसल हजम के साथ जिनको लास्ट टाइम उन्होंने हराया था। फैसल हजम का ताल्लुक जो है एनडीपी से है तो अब लग रहा है कि शायद वो जीत सकते हैं। सूथ सेमरी यहां पे बीसी जो है 2017 से जीतती आ रही है और ये पोस्ट जो थी पहले रॉस रोमानो के पास थी लेकिन उन्होंने भी कह दिया कि अब वो इस दफा जो है वो नहीं रन कर रहे हैं, तो एनडीपी जो है वो चाहती है कि यहां से जीते, लेकिन जो एल्गोमा स्टील है वो जरा थोड़ा अलाइन किए हुए हैं पीसी पार्टी के साथ जब से फोर्ड साहब ने कहा है कि हम टैरिफ्स का जवाब देंगे और ये वो, तो उनकी हमदर्दियां उनके साथ हैं तो शायद वो उनको फेवर कर सकते हैं। हैमिल्टन सेंटर यहां से आपको पता ही है कि एनडीपी की जो एंड्रिया हॉर्विथ है हमेशा जीतती थी लेकिन उन्होंने फिर रिजाइन कर दिया था और यहां से फिर एनडीपी की सारा जमा जीती थी। 2023 में, लेकिन आपको पता है सारा जमा की बहुत सारी कंट्रोवर्सी आ गई थी जब उन्होंने जो है गाजा के हक में बात कर ली थी, तो गवर्नमेंट ने जो पार्टी थी उसने कहा कि हम तो हमास ने जो किया है अक्टूबर 7 को हम तो उसको रिकग्नाइज नहीं करते हैं, तुमने उसका बात क्यों नहीं किया, तो फिर ये इंडिपेंडेंट हो गई थी, तो अभी एज एन इंडिपेंडेंट ही यहां से लड़ रही है। एग्लिंगटन लॉरेंस जनाब, यहां पर पीसी पार्टी के रॉबिन मार्टिन जो थे वो दो दफा जीत चुके हैं। पीसी पार्टी चाहती है कि हम फिर से यहां से विनय एनडीपी ने यहां से विदड्रॉ कर लिया है और उन्होंने कहा है जी कि मैं लिबरल्स का साथ दूंगी क्योंकि मैं रोकना चाहती हूं पीसी का, हम जो है रोकना चाहते हैं पीसी का अहेड ब्रांच। एंड देन दसवीं एंड आखिरी राइडिंग जो कि बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है वो है हेल्डीमॉर्ड नॉर्थ फोर्क, और यहां पे बॉबी एंड ब्रैडी जो थे वो एज इंडिपेंडेंट 2022 में जीती थी, और ये बड़ी हैरत की बात होती है कि आप इंडिपेंडेंट जीते, बड़ा रेयर होता है कि इंडिपेंडेंट कोई जीते, किसी ना किसी पार्टी के साथ अफिलियेशन होनी जरूरी है। ये जो है सीट होल्ड किए हुए हैं 2022 से 1995 तक, ये जो सीट थी ये पीसी की थी, पीसी अब जो है वापस लेना चाहते हैं, इसलिए अब इन्होंने जो लोकल मेयर हैं एमी मार्टिन उनको यहां से खड़ा किया है। अच्छा जनाब, ट्रंप साहब ने कहा है कि स्टार्टिंग ट्यूसडे मैं कनाडा और मेक्सिको के ऊपर तो टैरिफ्स लगा ही लगा रहा हूं, लेकिन डबल कर रहा हूं टैरिफ्स चाइना के ऊपर, 10% उन्होंने अनाउंस किया था, तो यानी कि अब वो कह रहे हैं 20% उनके ऊपर लगेंगे। आज अपने सोशल ट्रूथ सोशल पर उन्होंने कहा कि ये कॉन्स्टेंटली जो फेंटेनॉल और ये जो बाकी इलिसिट ड्रग्स जो हैं ये आ रही हैं इल अनएक्सेप्टेबल लेवल पे यूएसए में, तो हमको इनको टैक्स लगाना पड़ेगा क्योंकि ये हार्म कर रहे हैं और इनके खिलाफ कोई क्रैकडाउन जो है ये ट्रैफिक के खिलाफ ये लोग कंट्रीज नहीं कर रहे हैं और यूएस का इसमें नुकसान है। उन्होंने कहा जी कि 4 मार्च को अकॉर्डिंग टू स्केड्यूल ये टैरिफ्स जो हैं लगाए जाएंगे और 25% इसके अलावा जो टैरिफ्स हैं वो ईयू की जो इंपोर्ट्स हैं उसके ऊपर भी लगाए जाएंगे। अपने फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में उन्होंने ये आज सारे अनाउंसमेंट किए। इसके ऊपर बात करते हुए कनाडा के जो पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर डेविड मैकिन्टी जो है और इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर जो है उनकी आज मुलाकातें, एज वी स्पीक आज मुलाकातें उनकी हो रही हैं यूएस बॉर्डर गार्ड टॉम हॉमन और फेंटेनल जॉर जो है केविन ग्रासियो उनके साथ, इसके साथ साथ आरसीएमपी के जो कमिश्नर हैं माइक ड्यूहिम वो भी इनके साथ गए हुए हैं। लेकिन जो डेविड मैकिन्टी हैं उन्होंने कहा जी कि हमारे पास इररिफ्यूटेबल एविडेंस है कि हमने जब से ट्रंप साहब ने ये अनाउंस किया हमने जो कुछ मेजर्स लिए थे बॉर्डर के ऊपर उसकी वजह से बहुत ज्यादा हमने ड्रग जो है वो रोक दिया। जब आप कनाडा को कोई काम करने के लिए कहते हैं तो वो बिल्कुल ठीक से करते हैं और पूरे स्टैंडर्ड्स के मुताबिक करते हैं, वी हैव मेड प्रोग्रेस, तो हमारे पास एविडेंस है जो कि हम दिखाएंगे उसको यूएस को। ट्रंप साहब ने इसके अलावा आज ऑर्डर्स दिए हैं जितने फेडरल एजेंसीज हैं कि बिल्कुल वो काम जो है करना अभी रोक दें, इसलिए क्योंकि एलॉन मस्क का जो डॉज है वो प्रिपेयर कर रहा है इनको फायर करने का, मैस फायरिंग का जो है वो कर रहा है। मेमो एक ऑफिस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट एंड ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट की तरफ से गया है, उन्होंने कहा जी कि ये ले ऑफ हम कर रहे हैं ताकि प्लान रीस्ट्रक्चर किया जा सके ऑन मार्च 13। और इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि मेरी बातचीत, ट्रंप साहब ने कहा कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं ली जेल्डीन उनके साथ भी हुई है और उन्होंने बिल्कुल मुझे कहा है कि बहुत ज्यादा वेस्टफुल यहां पे स्पेंडिंग है, 65% वो कहते हैं जी वर्कफोर्स वो काटेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने जो ट्रंप और मस्क साहब का जो मेन मसला असल में जो लोगों को वहां पे नजर आ रहा है वो कहते हैं कि ट्रंप साहब के एजेंडे के साथ जो टैली नहीं करता, जो अनफ्रेंडली इनको लगता है उनके खिलाफ जो है अब ये हेल जो है इन्होंने रेस किया हुआ है। ट्रंप साहब ने कहा जी कि बिल्कुल आज क्लियरली कह दिया कि कोई सिक्योरिटी गारंटी हम यूक्रेन या जेलेंस्की साहब को नहीं देंगे। हालांकि जेलेंस्की साहब जो हैं वो डीसी में इनके साथ मुलाकात के लिए आ रहे हैं क्रिटिकल मिनरल्स की डील करने के लिए, कल फ्राइडे को जो है आ रहे हैं। इससे पहले जो है उन्होंने कहा था कि जी जेलेंस्की साहब ने, जैसे कि हमने आपको कल भी बताया था कि हम एक इकोनॉमिक डील करने के लिए मैं आ रहा हूं, लेकिन ये सारी की सारी डील के जो अमेरिका को ये क्रिटिकल मिनरल्स चाहिए वो सब डिपेंड करेंगे हमारे जो बातचीत है फोर्ड साहब के साथ। तो ट्रंप साहब ने कहा जी कि हाँ अगर आपको यूरोप को बड़ी तकलीफ है, वो यूक्रेन को बहुत ज्यादा जो है वो प्रोटेक्ट करना चाहता है तो वो खुद कर ले, हम तो इसके ऊपर नहीं करेंगे। और जो है वो ट्रंप साहब जो है उन्होंने कहा जी कि जो यूएस एड भी जो है वो जो इनको इनको वो हम जरा थोड़ा सा रोकेंगे, हालांकि इसमें जो यूरोपियन यूनियन है वो कह रहा है कि आप रशिया ने फुल स्केल जो है वो वॉर वेज की हुई है यूक्रेन के खिलाफ तो आपको इसके ऊपर बोलना चाहिए, तो वो इसके ऊपर कोई भी बात नहीं कर रहे हैं। ट्रंप साहब ने आज एक और भी ऑर्डर दिया है, उन्होंने कहा जी कि तमाम की तमाम ऑयल प्रोडक्शन कंसेशंस जो हम वेंजुएला को दे रहे थे और जो इसके जो प्रेसिडेंट है निकोलस मडुरो, जो ये सारी डील हुई थी बाइडन साहब के जमाने में, उस पूरी की पूरी चीज को हम कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि ये जो क्रुकड बाइडन, उन्होंने ऐसे कहा कि उन्होंने जो इनको जो ऑयल ट्रांजैक्शन डील दिया था नवंबर 26, 2022 को, तो इसके अंदर उनको कहा गया था कि इलेक्शंस में आप रिफॉर्म्स लाएं और इमिग्रेशंस में लाएं, जो कि वो नहीं लाए हैं, तो इसलिए हम इसको सब बिल्कुल खत्म कर रहे हैं। बाइडन ने यूएस एनर्जी जायंट शेवरॉन को लाइसेंस दिया था कि वो यहां पे अपना प्रोडक्शन कर सकते हैं वेनेजुएला के अंदर, और उनका ख्याल था कि ये अमेरिका के लिए फायदा रहेगा, लेकिन वो नहीं किया। अब ये चूंकि अब सारे आ रहे हैं टैरिफ्स और ये चीजें, इसके होते हुए आज एली लिली, आपको पता है बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल जो है वो कंपनी है, उसने कहा है कि वो स्पेंड करेंगे 27 बिलियन यूएस डॉलर्स इन द नेक्स्ट 4 इयर्स इन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, इन सेटिंग अप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इन यूएस, और ताकि इनके ऊपर जो है वो इम्पोर्ट ड्यूटीज जो है वो इनके ऊपर ना लगे। इसके साथ साथ उन्होंने जो है वो कहा है कि जी हम उनकी जो उनके जो सीईओ हैं उनकी मुलाकातें जो हैं वो हुई हैं ट्रंप साहब के साथ। जर्मन चांसलर प्रिजम्पटिव, अभी तक क्योंकि उन्होंने चार्ज नहीं लिया है, फ्रेडरिक मर्ज, उन्होंने कहा जी कि ट्रंप साहब के जो ये रिसेंट वीक्स के रिमार्क्स हैं ये बहुत ही ज्यादा अपसेटिंग है, और ये बिल्कुल शो करते हैं कि उनको यूरोप का कोई ख्याल नहीं है, तो इसलिए अब जर्मनी जो है एज एन इंडिपेंडेंट पॉलिसी अदर देन यूएस जो है वो चलाएगा। ट्रंप साहब ने कहा था जेलेंस्की को डिक्टेटर, जिसने के पोल्स जो है वो नहीं जीते हैं, और उसने एक टेरिबल जॉब किया है अपने कंट्री के लिए, और जो है वो ये बिल्कुल सही नहीं है। उसके जवाब में जेलेंस्की साहब ने हालांकि कहा था कि मैं रिजाइन कर दूंगा अगर आप यूक्रेन को एक जो है नेटो का मेंबरशिप दे देंगे, तो ट्रंप साहब ने इसके ऊपर कुछ खास मोहब्बत नहीं दिखाई थी। इससे पहले यूएस डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेथ जो है उन्होंने भी काफी हार्ट अटैक दिया था यूरोपियन यूनियन के लीडर्स को, जब उन्होंने कहा था कि अगर आप यूक्रेन को डिफेंड करना चाहते हैं तो आप करो, हम नहीं करेंगे, और पहले तो ये कह रहे थे कि अपना जीडीपी जो है वो 2% तक आप अपना जो जीडीपी का जो आपका जो ये फंड है डिफेंस के, ये जीडीपी का 2% होना चाहिए। पीट हेगसेथ ने कहा कि इसको 5% करो अगर आपको इतना ही प्यार आ रहा है यूक्रेन पे और आप उसको डिफेंड करना चाहते हो, क्योंकि हम नहीं करेंगे। तो काफी शॉकिंग था ये यूरोपियन यूनियन के लिए। इजरायली मिलिट्री जो है जी उसने हजारों पैलेस्टीनियंस को फिर से अब ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक में अरेस्ट किया है। इससे पहले भी कहा गया था कि तकरीबन अक्टूबर 2023 से 14,500 पैलेस्टीनियंस को जो है डिटेन किया है और थाउजेंड्स को जो है वो गाजा में, और ये जो 14,500 है ये ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक की है। तो अब रात को भी इन्होंने ओवरनाइट रेड्स की हैं, उसमें भी बहुत सारे लोगों को राउंड अप किया है इन द एरियाज ऑफ हेब्रॉन, तुलकरम, कलियलिया, रमल्ला, बैथलेहम, नेबलस, जेरिको और तूबस के एरिए में। तो बजाय इसके कि छोड़ें, सीज फायर हो गया है और लोगों को जी ये पकड़ रहे हैं और बस तमाशा जारी है। पाकिस्तान के अंदर भी जनाब काफी तमाशे हैं। पाकिस्तान में तहरीके तहफ़ुज़ आईन पाकिस्तान का जो अपोजिशन पार्टीज का जो अलायंस इनके अंडर हो रहा था होटल में, उसमें होटल मैनेजमेंट को काफी हेडेक दिया या तो गवर्नमेंट ने या मैनेजमेंट ने, सॉरी एस्टैब्लिशमेंट ने। इनका ये 2 डे मूड था, इनको पहले दिन का ही जब ये हुआ मीटिंग तो उसी के बाद इनको नोटिसेज आने शुरू हो गए। होटल के लोगों ने इनको कहा कि भई आप लोग छोड़ के यहां से जाओ, हालांकि जो शायद खाकान अब्बासी है उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ना तो हम सड़कों पे बैठे हैं, ना तो हमने तूफान उठाया हुआ है, ना हम लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, चुप करके एक होटल के एक कमरे में बैठ के हम ये सारा कर रहे हैं, तो हमको ये करने दो। बहरहाल जी वो होटल के मैनेजमेंट ने कहा जी साड़ा होटल बंद कराओगे पैजाने थो जाओ। तो बहरहाल जी फिर आज इनकी जो है मीटिंग जो थी वो इन्होंने कहा कि उसमें बातचीत जो की उसमें उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, इसमें एक डायलॉग की जरूरत है और एक ज्वाइंट पॉलिसी बनाने की जरूरत है जिसमें कि एक ऐसी स्ट्रेटेजी हो कि नेशनल डायलॉग को हम चला सके। इसके अलावा टीटीएपी के जो चीफ है महमूद खान अचकजई वो जो थे इस मीटिंग को चेयर कर रहे थे और उन्होंने कहा जी कि सुप्रीमेसी ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए और ये जो रिग्ड इलेक्शन हुआ था फरवरी 8, 2024 को इसको हम नहीं मानते और उसी की वजह से ये पॉलिटिकल क्राइसिस मुल्क के अंदर है। तो ये जो है ये सारा कुछ क्योंकि इस पार्लियामेंट का कुछ लीगल स्टैंडिंग नहीं है तो सारा इसको खत्म करना पड़ेगा एंड अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ जो है वो चलना पड़ेगा। और ये जो रैम्पेंट करप्शन सॉरी वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किया जा रहा है और जो डायसेंटिंग वॉइसेस को पकड़ पकड़ के जो है वो डाला जा रहा है जेलों में, तो ये शो करता है इनकमेंट गवर्नमेंट का फैशिज्म। पाकिस्तान यूएई जो है वो अब और ज्यादा टाइज बूस्ट करेंगे, पता नहीं और अब कितने करने ने, ये सारी बातें जो है उस वक्त हुई जिस वक्त अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान आज पहुंचे हैं वन डे विजिट पे इस्लामाबाद। हमने आपको कल बताया था कि वो आ रहे हैं, तो आज वो पहुंच गए हैं और उन्होंने कहा जी कि हम भी इस को जो है ये वार्म रिलेशनशिप है इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इनको वेलकम किया था और वो कहते हैं जी कि ये इससे पहले शहबाज शरीफ ने कहा कि मेरी बड़ी प्रोडक्टिव मीटिंग हुई थी यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ और उसमें हमने कहा था कि हम टाइज को फर्दर आगे लेके जाएंगे। पीएमएलएन लेड गवर्नमेंट जो है जनाब, क्योंकि उन आईएमएफ से पहले आ रहे हैं तो जनाब आज दबादब उन्होंने और जो है नए मिनिस्टर्स जो हैं वो बना लिए। 27 न्यू मिनिस्टर्स जो हैं जनाब उन्होंने आज ओथ लिया है ईवान सदर के ऊपर। प्रेसिडेंट जरदारी ने इनको ओथ लिया है, इसमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, सेनेटर चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी और सीनियर ऑफिशियल्स जो थे वो थे। इसके अंदर 12 फेडरल मिनिस्टर होंगे, 9 स्टेट मिनिस्टर्स हैं और 3 एडवाइजर हैं। वाह 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 क्या बात है, पहले आगे ना ये मैफ्ते थे, हूं गड्डियां लैनियां, मिनिस्टर बढ़ाने, नयाशियां करनियां, नशाइये देने, घूमना है फिरना है, यही तो कुछ करना है। फिर कहना है जी, रोना है पीटना कि जी हमारे तो मुल्क में पैसा नहीं है। तो जनाब ये हनीफ अब्बासी, मुइन वट्टू, मुस्तफा कमाल, औरंगजेब कच्ची, सरदार यूसुफ, राना मुबशर, रजा हयात हिरानी, तारिक फजल चौधरी, अली परवेज मलिक, शजा फातिमा, जुनेद अनवर, खालिद मक्सी, ये फेडरल मिनिस्टर के लिए इन्होंने ओथ लिया। हूं पता नहीं है राना मुबशर जड़ा है मेरा दोस्त नहीं है, जड़ा जर्नलिस्ट है, मैं पूछांगी हूं इसको। तलाल चौधरी, बैरिस्टर अकील मलिक, मलिक रशीद, खील दास कोहिस्तानी, अब्दुल रहमान कंजू, बिलाल अजहर कियानी, मुख्तार भरत, ओन चौधरी, वजी कमर जो हैं ये स्टेट मिनिस्टर रहेंगे। तो 21 लोगों ने आज ओथ लिया। एक जो फेडरल मिनिस्टर है इमरान शाह और 2 स्टेट मिनिस्टर शजरा और अरमगान वो नहीं आ सके, वो कहते जी हम ट्रैफिक में फंस गए थे। मतलब अजीब कौम है। अच्छा जी अच्छा जनाब, यूएस के अंदर 2 जो कांग्रेसमैन हैं जो विल्सन एंड ऑगस्ट पुलगर, उन्होंने आज फिर एक लंबा चौड़ा खत जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो को लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि फ्री इमरान खान। विल्सन साहब जो आपको पता ही है कि बड़े अरसे से ये बातें कर रहे हैं, ट्वीट्स कर रहे हैं, कह रहे हैं फ्री इमरान खान। इससे पहले वो कहते हैं जी मैंने एक और भी लेटर लिखा है प्रेसिडेंट जरदारी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर को कि इमरान खान को बाहर निकालो पाई जाने। इनों तीनों की वजह से ना थी अंदर है, तुझे किसने खत लिखे हैं। अच्छा जी, तो वो कहते हैं कि अगर आप हमारे साथ स्ट्रांग रिलेशनशिप चाहते हैं तो इसको आप छोड़ो। उसमें इन्होंने लिखा है मार्को रूबियो को कि इमरान खान को लोग बहुत पसंद करते हैं, ही इज द बिलव्ड लीडर ऑफ पाकिस्तान, और तुमको मालूम ही है कि ट्रंप साहब का जो पहला एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें खान के साथ ट्रंप साहब की बहुत मोहब्बत थी और बहुत अच्छे हमारे टाइज इंडिया पाकिस्तान यूएस के चल रहे थे, तो इसको छोड़ना चाहिए है। पाकिस्तान यूएस के अगर टाइज को, फ्रीडम वैल्यूज को कोर पे रखते हुए और डेमोक्रेसी को चलाते हुए और फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ प्रेस और फ्रीडम ऑफ असेंबली देते हुए अगर हमको पाकिस्तान के साथ डेमोक्रेसी रिस्टोर करना है तो फिर ये सब चीजों का ख्याल करना पड़ेगा। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान का जो सिविलियन मिलिट्री है और लीडरशिप है उसको भी मैंने लेटर लिखा है, अगर आप हमारे साथ टाइज बूस्ट करना चाहते हैं तो आपको इमरान खान को छोड़ना पड़ेगा। इससे पहले जो है कुछ दिन पहले, अभी इनके लेटर से पहले 12 जो ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस हैं उन्होंने भी एक लेटर जो है कायर स्टॉर्मर जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं इंग्लैंड की उनको लिखा है और उनको बोला है जी कि ना सिर्फ खान बल्कि तमाम पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ा जाए बिकॉज दिस इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ एंड जो है वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ये जो किया जा रहा है। बहरहाल जी कौन सुनता है। इंडिया के अंदर जनाब जो शाही जामिया मस्जिद है संबल की यूपी में, उसके स्यापे जो हैं बिल्कुल खत्म नहीं हो रहे हैं। वहां पे जो केयर टेकर थे उन्होंने कहा था कि रमदान शुरू होने से पहले हमको इसका जो है वो रिपेयर कराना है और उन्होंने एक इसमें डाला है एप्लीकेशन भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में कि ये जो मुगल ईरा मॉस्क है उसकी हालत बहुत खराब है, हमको इसका जो है वो रिपेयर करना है। आदित्यनाथ लेड यूपी गवर्नमेंट और हिंदू पिटिशनर्स जो है उन्होंने इस एप्लीकेशन को अपोज किया। उन्होंने कहा कि ये आप आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को डिसाइड करने दो कि मस्जिद को रिपेयर चाहिए कि नहीं। रिपेयर के नाम पर जितना भी हिंदू टेम्पल का साइन है अंदर आप इसको खत्म करना चाहते हो और वो क्लेम करते हैं कि ये मस्जिद जो थी सेंचुरीज ओल्ड हरी हरी हर हरी टेम्पल था कालकी का और अब आप इसको जबरदस्ती आपने इसमें मस्जिद बनाई। यानी मैं समझ नहीं आई कि पूरे खुले नंगे हिंदुस्तान के जड़े मुगल सन ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਨਕੇ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਹੀ ਮਿਲੇ ਥੇ ਢਾਡਾ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਔਰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਹੀਂ ਪੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਥੀ ਮੁਗਲੋਂ ਕੋ ਹੈ ਜੀ ਤੋ ਅਗਰ ਆ ਰਹੀ ਥੀ ਉਨਕੋ ਤੋ ਫਿਰ ਆਪ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਔਰ ਅਗਰ ਆਪ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਤੋ ਲੋਚਾ ਹੈ ਬੀਚ ਮੇ ਵੈਸੇ ਹੈ ਨਾ ਤੋ ਮੁਝੇ ਸਮਝ ਮੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਸਜਿਦਾਂ ਕਿਉਂ ਗਿਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਕਟੀਆ ਅਸ਼ੋਕ ਸਰਵਾਰਕਰ ਜੋ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਰੈਲੇਟਿਵ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਕੇ ਬੜੇ ਆਈਕੋਨ ਹੈ ਸਰਵਾਰਕਰ ਸਾਹਿਬ ਉਨਕੇ ਰੈਲੇਟਿਵ ਹੋਤੇ ਹੋਏ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਜੋ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਥੇ ਉਸਕੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਡਾਲੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਨਾ ਫੈਕਟਸ ਹੈ ਨਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾ ਇਹ ਕੇਸ ਜੋ ਹੈ ਇਸਕੇ ਉੱਪਰ ਡਾਲ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਵਾਰਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋ ਇੰਡੀਆ ਕੇ ਫਰੀਡਮ ਮੇ ਬੜਾ ਜੋ ਹੈ ਹੱਥ ਡਾਲਾ ਹੈ ਕਾਮ ਮਤਲਬ ਰੋਲ ਡਾਲਾ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੋ ਥੇ ਵੋ ਇੱਕ ਜੋ ਸਪੀਚ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਲੰਡਨ ਮੇ ਕੀ ਥੀ ਮਾਰਚ ਉਸ ਮੇ ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਇਹ ਜੋ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਾਏ ਥੇ ਮਾਰਚ 2023 ਮੇ ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਜੀ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੇ ਵਕਤ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਲੰਡਨ ਮੇ ਸਪੀਚ ਕੀ ਥੀ ਉਸ ਮੇ ਉਹਨੇ ਸਰਵਾਰਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਇੱਕ ਜੋ ਰਾਈਟਿੰਗ ਥਾ ਉਸਕਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਆ ਥਾ ਔਰ ਬੋਲਾ ਥਾ ਕਿ ਵੋ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਪੇ ਅਸੋਲਟ ਕਰਕੇ ਉਨਕੋ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਤਾ ਹੈ ਤੋ ਇਸਕੇ ਉਪਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬ ਬਿਠਾਨੀ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਜੋ ਹੈ ਐਂਟੀ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ ਤੋ ਉਸਕੇ ਉਪਰ ਜਨਾਬ ਆਪ ਬੜਾ ਸ਼ੋਰ ਜੋ ਹੈ ਵਹਾਂ ਪੇ ਮਚਾ ਹੁਆ ਹੈ ਆਸਕਰ ਵਿਨਿੰਗ ਐਕਟਰ ਜੀਨ ਹੈਕਮਨ ਜੋ ਹੈ 95 ਈਅਰਸ ਉਨਕੀ ਏਜ ਥੀ ਔਰ ਉਨਕੀ ਵਾਈਫ ਬੈਟਸੀ ਅਰਕਾਵਾ 63 ਈਅਰਸ ਉਨਕੀ ਏਜ ਥੀ ਔਰ ਉਨਕਾ ਕੁੱਤਾ ਅੱਜ ਨਿਊ ਮੈਕਸੀਕੋ ਹੋਮ ਕੇ ਅੰਦਰ ਮਰੇ ਪਾਏ ਗਏ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਫਾਊਲ ਪਲੇ ਤੋ ਹਮਕੋ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਛ ਡਿਟੇਲਸ ਨਹੀਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕੇ ਡੈਥਸ ਕੈਸੇ ਹੋਏ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਭੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹੈਕਮੈਨ ਨੇ ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਟਾਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਲਸ ਕੀਏ ਐਜ਼ ਅ ਵਿਲਨ ਹੀਰੋ ਐਂਟੀ ਹੀਰੋ ਇਨ ਡਜ਼ਨਸ ਆਫ ਫਿਲਮ ਸਿੰਸ 1960 ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਥੇ 2000 ਕੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਇਨਕੋ 5 ਟਾਈਮ ਜੋ ਹੈ ਆਸਕਰ ਕੇ ਲੀਏ ਨਾਮੀਨੇਟ ਵੀ ਕੀਆ ਗਿਆ ਥਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਜੋ ਅਪਕਮਿੰਗ ਫਿਲਮ ਹੈ ਸਿਕੰਦਰ ਉਸਕਾ ਦੂਸਰਾ ਟੀਜ਼ਰ ਅਭੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਕੁਛ ਤੋ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੋ ਨਕਲ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਨੀਲ ਕਾ ਜੋ ਮੂਵੀ ਥਾ ਸਾਲਾਰ ਜਿਸਮੇ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਸ ਥਾ ਤੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਈ ਆਕਟੇਨ ਐਕਸ਼ਨ ਸੀਕੁਐਂਸ ਇਸਕੇ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹਾ ਹੈ ਸਿਕੰਦਰ ਮੇ ਜਿਸਮੇ ਸੱਲੂ ਭਾਈ ਕਾ ਸਿਗਨੇਚਰ ਸਟਾਈਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹਾ ਹੈ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਨਕੋ ਮੁੱਕੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਉਨਕੋ ਉਠਾ ਉਠਾ ਕੇ ਫੇਂਕ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਵੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤੋ ਵੋ ਕਹਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਸ ਕੇ ਸਟਾਈਲ ਸੇ ਜਿਸਮੇ ਕੇ ਵਹੀ ਐਸੇ ਹੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਲੋਕ ਆਤੇ ਥੇ ਜਿਸਮੇ ਲੋਕੋ ਕੇ ਪਾਸ ਸ਼ਾਰਪ ਵੈਪਨਸ ਥੇ ਔਰ ਸ਼ਾਰਪ ਥੇ ਦੂਸਰੇ ਚੀਜ਼ੇ ਥੇ ਔਰ ਵੋ ਲੜ ਰਹਾ ਥਾ ਤੋ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਲੂ ਭਾਈ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਸ ਐਸ ਰਾਜਾਮੁਲੀ ਆਪਕੋ ਮਾਲੂਮ ਹੀ ਹੈ ਹਿਊਜ ਫਿਲਮੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹਜ਼ਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਤੋ ਉਨਕੇ ਉਪਰ ਜੋ ਹੈ ਅੱਜ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਔਰ ਟੋਰਚਰ ਕਾ ਇੱਕ ਐਕਿਊਜੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਹੈ ਬਾਏ ਉਪਲਾ ਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਵਾਸੋ ਰਾਓ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਜਿਸਨੇ ਅੱਜ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਸਨੇ ਉਸਸੇ ਮਰਨੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਉਸਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਕਲੋਜ ਫਰੈਂਡ ਥਾ 1990s ਮੇ ਹਮਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਿਲਮੋ ਮੇ ਇਕੱਠੇ ਕਾਮ ਕੀਆ ਥਾ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਹਮਾਰੇ ਬੀਚ ਮੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆ ਗਈ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ ਜਿਤਨਾ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਚੋ ਤੋ ਉਸਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਹਮਾਰਾ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਥਾ ਮੈਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਥਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਐਸੇ ਕਰੇਗਾ ਪਹਿਲੇ ਤੋ ਇਸਨੇ ਮੁਝੇ ਕਹਾ ਕਿ ਤੁਮ ਇਸਕੋ ਛੋੜ ਦੋ ਪਹਿਲੇ ਤੋ ਮੈਂ ਛੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹਤਾ ਥਾ ਫਿਰ ਮੈਨੇ ਇਸਕੋ ਛੋੜ ਦਿਆ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਕੋ ਇਸਕੇ ਲੀਏ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਇਸਨੇ ਮੁਝੇ ਟੋਰਚਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆ ਇਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਕਹਾ ਕਿ ਇਸਕਾ ਇੱਕ ਲਾਏ ਡਿਟੈਕਟਰ ਟੈਸਟ ਕਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾ ਜੋ ਅਰਲੀ ਐਗਜ਼ਿਟ ਹੁਆ ਹੈ ਜੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਟਰੋਫੀ ਸੇ ਉਸਕੇ ਉਪਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੋ ਹੈ ਖੁਦ ਸੇ ਨੋਟਿਸ ਲੇਂਗੇ ਆਜ ਇਸਕੀ ਬਾਤ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕੇ ਏਡ ਔਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਡ ਪਬਲਿਕ ਅਫੇਅਰਸ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉਲਾ ਨੇ ਬਾਤ ਕੀਆ ਹੈ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋ ਮੇ ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਜੀ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤੋ ਪੀਸੀਬੀ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਵੋ ਜੋ ਚਾਹਤਾ ਹੈ ਵੋ ਕਰਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਭੀ ਹਮੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਹੀ ਰਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੋ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ ਠੀਕ ਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ ਤੋ ਇਹ ਕਿਸੀ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਇੰਸਟੈਂਸ ਜਾਂ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਾ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪਿਛਲੇ 10-5-10 ਸਾਲ ਸੇ ਚੱਲ ਰਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸਮੇ ਆਪਕੋ ਮਾਲੂਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕੇ ਆਫੀਸ਼ਲਸ ਕੋ ਕਿਤਨੇ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਪੈਸੇ ਦੀਏ ਜਾਤੇ ਹੈ ਤੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਨਾ ਚਾਹੀਏ ਜੋ ਮੈਂਟਰਸ ਹੈ ਉਨਕੋ 5-5 million ਰੁਪੀਸ ਮਿਲਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਨਕੋ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨਕੇ ਰਿਸਪਾਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਕਿਆ ਹੈ ਤੋ ਯਾਨੀ ਕਾਮ ਨਾ ਕਰਨੇ ਕੇ ਉਨਕੋ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਇਨਕੇ ਪਰਕਸ ਤੋ ਐਸੇ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਕੋ ਮਾਲੂਮ ਚਲੇ ਤੋ ਆਪਕੋ ਲਗੇਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਆਪਕੋ ਲਗੇਗਾ ਕਿਸੀ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀ ਕਾ ਇਹ ਸੈਲਰੀ ਹੈ ਤੋ ਇਸ ਸਭ ਕੇ ਅੰਦਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਲਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਬੋਰਡ ਕੋ ਵੈਸੇ ਹੀ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪੜੇਗਾ ਜੈਸੇ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ ਕੇ ਬੋਰਡ ਪੜਤੇ ਹੈ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਕਿਆ ਲਾਇਆ ਭਾਈ ਜਾਨ ਤੁਸੀਂ हूं तो पाकिस्तान हार गया। और जनाब चैंपियंस ट्रॉफी का जो आखिरी मैच था बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में, एक भी बॉल किए बगैर रावलपिंडी में ये कैंसल हो गया रेन के बगैर। हालांकि दोनों ही टीमें सोच रहे थे कि हम कुछ तो ग्लोरी घर लेके जाएंगे, लेकिन अल्लाह ने वो मौका भी नहीं दिया। पाकिस्तान ने विन किया था ये 50 ओवर टूर्नामेंट जो था चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में, लेकिन अब उन्होंने बैक टू बैक दोनों अपने मैचेस न्यूजीलैंड और इंडिया के खिलाफ हारे थे और ग्रुप ए के बॉटम के ऊपर था। तो वही हाल जो है वो बांग्लादेश का था, ये अब दोनों ही सेमीज से बाहर थे। अफगान कैप्टन हशमतुल्ला शहीदी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा जी कि हम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है और हमारा जो टीम है उसके में भी बहुत कॉन्फिडेंस है, क्योंकि हमने इंग्लैंड को अगर हम जो है वो बीट कर सकते हैं तो हम ऑस्ट्रेलिया को भी करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के साथ इनका चैंपियंस ट्रॉफी का मैच जो है कद्दाफी स्टेडियम में कल है। उन्होंने कहा जी कि ये जीत इंग्लैंड के खिलाफ जीतने के बाद प्लेयर्स का मोरल काफी हाई है और ऑस्ट्रेलिया बहुत ही टफ टीम है, लेकिन हम पूरा कोशिश करेंगे इसको विन करने के। तो उनसे पूछा गया कि ग्लेन मैक्सवेल को कैसे तुम जो है वो रोकोगे, तो उन्होंने कहा जी हमारे पास ना सिर्फ ग्लेन मैक्सवेल बल्कि पूरा ऑस्ट्रेलिया का जो टीम है उसको जो है वो उससे निपटने के लिए हमारे पास प्लान है। एंड जनाब एब्सोल्यूटली अवर लास्ट न्यूज इज अबाउट एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो वो करने वाले थे एशिया कप इन द फोर्थ एंड फिफ्थ वीक ऑफ सितंबर इन T20 फॉर्मेट, तो ये होने वाला था ओरिजिनली, तो एलोकेट किया था इंडिया के लिए, लेकिन चूंकि अब इंडिया पाकिस्तान में कांस्टेंटली जो है पॉलिटिकल रिफ्ट चलता ही चला जा रहा है, तो इसलिए ACC ने डिसाइड किया है कि अब किसी और न्यूट्रल वेन्यू पे ये मैचेस होंगे।
चलिए जी न्यूट्रल वेन्यू पे मैचेस कर लेंगे, कहीं भी खेल लेंगे।
हाँ कहीं खेल लेंगे,
टेंशन ही नहीं,
नहीं कोई गल नहीं, गली में मल्ले में जहाँ कहोगे
खेल लेंगे, मसला ही नहीं है। जनाब दो स्पॉन्सर्स के पैगाम ले लेते हैं और उसके बाद तो प्रोग्राम में वापस आते हैं, फिर हम आपकी किससे मुलाकात कराने जा रहे हैं,
साकिब खान,
साकिब खान साहब से बात करा रहे हैं और उनसे पूछेंगे कहाँ से आई ये बारिश,
क्यों आई ये बारिश, किसने लाई ये बारिश,
आने वाला तो पता ही है सबको, लेकिन बाहर
नहीं वो कभी कभी आर्टिफिशियल चीजें करके भी तो बारिश कर देते हैं ना,
ये भी हो सकता है।
हाँ पायन देखो ये कॉन्स्पिरेसी तो हमने जरूर ढूंढनी है ना,
तो आपका काम है ना। चलिए जनाब दो कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, प्रोग्राम में वापस आते हैं। हमारा नंबर 416-620-1778।
विलेज टेस्ट पूरे ऑन्टेरियो का सबसे बड़ा हलाल सुपर रेस्टोरेंट है। कॉन्टिनेंटल चाइनीज बारबेक्यूज ट्राई करना चाहते हैं, कढ़ाई आइटम्स हैं एंड स्वीट्स एंड फ्रूट्स में बे इंतहा वैरायटी है। रमजान के दिनों में अगर आप कोई पार्टी कर रहे हैं अपना टाइम सेव कीजिएगा, दोस्तों के साथ जाइए, बेहतरीन फीस्ट एंजॉय कीजिए विलेज टेस्ट पे। आफ्टर मिसेसागा दे आर इन ओकवेल एज वेल। विलेज टेस्ट 9052323663। विलेज टेस्ट।
आयशा ये तुम क्या सर पकड़ कर बैठी हो, घर में मेहमान आ रहे हैं और मुझे 10 जगहों पर जाना पड़ेगा ग्रोसरी के लिए।
10 जगह क्यों, एक ही जगह है फातिमा ग्रोसर्स।
फातिमा ग्रोसर्स?
जी हाँ फातिमा ग्रोसर्स, मसाले, ताज़ा सब्जियाँ, फल, हलाल गोश्त, मैरिनेटेड मीट आइटम्स और स्पेशल बीफ स्टेक्स भी। ग्रोसरी का सारा सामान साजो आवाज के रेफरेंस पर स्पेशल डिस्काउंट भी। मैकलॉगलन और ब्रिस्टल के इंटरसेक्शन पर न्यू फातिमा ग्रोसर्स, 512 ब्रिस्टल रोड वेस्ट ऑफ मिसिसागा। 9058487000। फातिमा ग्रोसर्स, सबसे जबरदस्त।
इन सब कामों के लिए तो मुझे बैक होम ही जाना पड़ेगा।
कौन से काम?
वही बेटे की शादी सर पर है और ज्वेलरी का खास काम अभी तक नहीं हुआ।
बस इतनी छोटी सी बात, पायल ज्वेलर्स पे हर किस्म की ज्वेलरी है और वो स्पेशलाइज करते हैं इन सब में ही, दुबई, सिंगापुर, इंडिया, पाकिस्तान और यहाँ की तमाम लेटेस्ट ज्वेलरी।
मुझे उनका एड्रेस बताओ, मैं आज ही ये काम जाके करवाती हूँ।
जी जी बिल्कुल, पायल ज्वेलर्स का एड्रेस है 2720 नॉर्थ पार्क ड्राइव यूनिट 42 ब्रैम्पटन। पायल उसके असलम भाई को कॉल करें ना एट 9057907879, दैट इज 9057907879।
साल की सबसे बड़ी सेल बटाला सुपरमार्केट पर स्पेशल रमजान सेल। हर साल की तरह इस साल भी रमजान की पूरी ग्रोसरी करें बटाला सुपरमार्केट पर। जबरदस्त सेल ग्रोसरी के हर आइटम पर, खजूरें, मसाले, चावल, जूसेस, कुकिंग ऑयल, फ्रोजन आइटम्स, ताज़ा हलाल मीट्स और बहुत कुछ। सेल स्टार्टिंग फ्रॉम February 21st टू March 9th, ओनली एट बटाला सुपरमार्केट, 200 मार्कम रोड इन स्कारबो, 416-264-3111। रमजान सेल फ्लायर्स के लिए विजिट करें shopbatala.ca।
चेहरा है या चांद।
हाय हाय, आजकल दिया ससा कितनी जवान ने यार, देखो तो जरा।
बीबी जवान नहीं, डॉक्टरों का कमाल है। BNC मेडिकल क्लिनिक के डॉक्टर अंकुश, वन ऑफ द टॉप 3 डॉक्टर्स इन ब्रैम्पटन। माथे पर, चेहरे पर झुर्रियां यानी रिंकल्स, लिप ट्रीटमेंट, नोज ट्रीटमेंट, बोटॉक्स एंड फिलर्स के जरिए, और हाँ अगर आपके बाल गिरते हैं तो PRP के जरिए हेयर लॉस का इलाज भी। ऑलवेज गो टू एक्सपर्ट, ही विल मेक यू लुक मच यंगर। BNC क्लिनिक के डॉक्टर अंकुश, 437-757-8191. Call anytime.
हाय हाय, आजकल दिया ससा कितनी जवान ने यार, देखो तो जरा।
बीबी जवान नहीं, डॉक्टरों का कमाल है। BNC मेडिकल क्लिनिक के डॉक्टर अंकुश, वन ऑफ द टॉप 3 डॉक्टर्स इन ब्रैम्पटन। माथे पर, चेहरे पर झुर्रियां यानी रिंकल्स, लिप ट्रीटमेंट, नोज ट्रीटमेंट, बोटॉक्स एंड फिलर्स के जरिए, और हाँ अगर आपके बाल गिरते हैं तो PRP के जरिए हेयर लॉस का इलाज भी। ऑलवेज गो टू एक्सपर्ट, ही विल मेक यू लुक मच यंगर। BNC क्लिनिक के डॉक्टर अंकुश, 437-757-8191. Call anytime.
Pizza's Pros and Wings, 6 locations to serve in GTA, North York, Brampton, Etobicoke या हो Mississauga. Fresh और मजेदार pizzas की variety, या order करना हो अपना मन पसंद custom made pizza. इसके अलावा pizza roti, potato wedges, fries, salad, garlic bread या खाने हो garlic fingers. To order or take out, call 905-789-8838,
905-789-8838.
मुझे मजे दे चिकन टिक्के कबाब बिरयानी दाल तड़का,
लाहौरी स्टाइल नाश्ता, मजेदार कढ़ाई, मल्ट वॉटरिंग कबाब एंड सिजलिंग बारबेक्यू आइटम,
शाहीन टिक्का और कबाब
इन फ्लेमिंगटन मॉल।
ग्रिल इन द हट Mississauga में ऑर्डर वाया फोन, इमरान भाई को कॉल करें।
इंतहाई लजीज बिरयानी खाना हो या फिर कढ़ाई खाना हो या फिर स्टेक्स को एंजॉय करना है तो आप ऑर्डर प्लेस कीजिए 905-405-8383। ग्रिल इन द हट। भाई खवातीन को तो जेवरात बहुत अच्छे लगते हैं, चूड़ियाँ ले लो, कड़े ले लो, चेन्स ले लो, स्टोन ज्वेलरीज, रूबी ज्वेलर्स का नाम याद रखना। शादी ब्याह है या आम कोई छोटा बर्थडे पार्टी अप या किसी को गिफ्ट देने के लिए, यू मस्ट विजिट रूबी ज्वेलर्स। गोल्ड का ट्रेड है या फिर रिपेयर है, रूबी ज्वेलर्स, 7086 एयरपोर्ट रोड, 9056776888।
टेली टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स, LEDs और होम अप्लायंसेस की हॉटेस्ट और ब्रांडेड रेंज के साथ 0% फाइनेंस, गारंटी ऑन लोएस्ट प्राइसेस और फ्री डिलीवरी इन GTA। तो इंतजार कैसा, अभी विजिट करें टेली टाइम ब्रैम्पटन, 280 रदरफोर्ड रोड, या स्प्रिंगडेल स्क्वायर शॉपिंग सेंटर, या इटोबिको 1770 एल्बियन रोड, या 9909 मार्कम रोड। मजीद तफसीलात के लिए कॉल करें 905-455-1666। टेली टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स।
कर्ज से निजात के लिए एक ही नाम, मोहम्मद सिद्दीक, ऑल द सॉल्यूशन, पुरसकून जिंदगी और क्रेडिटर्स की कॉल से छुटकारा।
मोहम्मद सिद्दीक ऑल डेट सॉल्यूशन, बैंकरप्सी, इंसॉल्वेंसी, कंसोलिडेशन करते हैं अप टू 80%। मोहम्मद सिद्दीक आपके लिए काम करते हैं, पुरसकून जिंदगी, अच्छी सेहत और लंबी उम्र की जामिन। अपनी जिंदगी को पुरसकून करने के लिए, कर्जों से पाक करने के लिए राबिता कीजिए मोहम्मद सिद्दीक, 416-671-0577।
वेलकम बैक तमाम सामीन जो हमें सुन रहे हैं 770 AM डायल पर प्रोग्राम साजो आवाज। मैं हूं आपका होस्ट आमिर अहमद, और हमारे साथ जो है पुरानी खबरें, मतलब अब तो पुरानी हो गई, अब मैं कह सकता हूं कि खबरें हो गई, अब तो कह सकता हूं ना।
हाँ।
अब बासी खबरें अभी अभी सुनाई है इन्होंने, क्योंकि सुना चुकी है ना।
पड़े पड़े बासी हो गई है
पड़े वो जब सुना दी तो बासी हो गई
नहीं ये पड़े पड़े बासी हो गई टेबल पे
हाँ तो वो टेबल आपकी पड़ी हुई ना बासी हो गया इसकी कोई वैल्यू नहीं रही क्योंकि आपने सुना दी ना अब इसकी वैल्यू खत्म हो
जीरो
बिल्कुल जीरो हो गई
जीरो
ऐसे जीरो जैसे कि पाकिस्तान के जो चार्ट पे टेबल पे जो है ना वो पॉइंट्स टेबल पे जीरो
अच्छा तुम्हें सुनाती हूँ बड़ा मजे का किस्सा एक ना लेडी है उसको फोन एक आया क्रैंक कॉल आया उसने कहा आपने जिससे आप इंडियन थी वो आपने जिससे शादी की है वो पाकिस्तानी एजेंट है तो उसने कहा है अब मैं कैसे पता चलाऊं तो वो जब मियां घर आया तो उसने बॉल उसको ना फेंकने शुरू किया ऐसे एक दो तीन चार छह के छह उसने ड्रॉप कर दिए कहती है हाँ इतनी गंदी बॉलिंग हमारे पड़ोसी ही करते हैं उसने डिवोर्स ले लिया
तो डिवोर्स ले लिया इस वक्त हमारे साथ जो है हमारे एक्सपर्ट क्रिकेट के साकिब जो है वो शामिल हो चुके हैं स्काइप पर तो आइए साकिब को खुश आमदीद कहते हैं और फिर उनसे आगे बात करते हैं जनाब अब तो बारिश ने भी हमारा साथ नहीं दिया साकिब
का कानून
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहु कैसे हैं
वालेकुम सलाम कैसे हैं आप जी खैर
बिल्कुल ठीक ठाक तो शाजिया मलिक साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं
शाजिया साकिब कैसे हो
बिल्कुल ठीक ठाक शाजी आप सुनाए क्या हाल
है बिल्कुल ठीक है मैं ये तुम क्या कर रहे हैं ये तुम अपना पठान भेज रहे हैं ये यूनुस खान उसको अफगानिस्तान को सिखाने के लिए तो मेरा तुम अपनी टीम को क्यों नहीं सिखा रहे हैं ये व्हाट इज दिस
वो हमारी टीम सीखना नहीं चाहती है जी वो दो कुछ चीजें अच्छी होने लगती हैं तो उनके एक्सपर्टीज इसी में है कि अच्छी चीज को खराब कर दें और जो बाकी टीमें हैं वो चाहती हैं कि अच्छी जो खराब चीजें उनको ठीक कर दें तो यही फर्क है जी
क्या क्या नहीं थोड़ा दिल का जख्म जो है थोड़ा उसको और हरा करो बताओ क्या क्या खराबियां रही पाकिस्तान का जो इंडिया के साथ मैच था उसमें
उस कोई चीज तो उसमें
सही क्या थी ये बताओ
चलो एक सही बता दो जो चीज सही थी क्योंकि बाकी तो सब खराब था
नहीं वो देखें एक तो ऑब्वियसली जो हम देखते आ रहे हैं पिछले तीन चार सालों से जो पाकिस्तान टीम का हाल है खासकर इंडिया के खिलाफ और जो इंडियन टीम क्रिकेट में जो मैं कहूंगा बल्कि टीम नहीं बल्कि इंडियन क्रिकेट में जो आया है जी चेंज जिस लेवल पे वो चले गए हैं जो प्रोफेशनलिज्म वहां भी चीजें ठीक है ज्यादातर मतलब अगर मैं उनकी अपॉइंटमेंट्स देखूं उनकी बोर्ड्स की तो वो होती हैं पॉलिटिकली अपॉइंटमेंट्स वहां भी होती हैं लेकिन उनका फिर कोई इंटरफेरेंस नहीं होती बाकी क्रिकेट के अफेयर्स में तो ये चीजें उनमें आ गई हैं चेंज आ गया है एक प्रोफेशनलिज्म आ गया है कुछ स्टैंडर्ड वो फॉलो करते हैं आपको मैं बड़ी रिसेंट एग्जाम्पल दूंगा जब अभी ये लोग ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट सीरीज हार कर आए थे तो बोर्ड ने उसको बड़े सीरियसली देखा था कुछ चीजें उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई हैं कुछ चेंजेस किए हैं इन्होंने तो फौरन ही उस पर उन्होंने एक्शन ले लिया ये नहीं कि जी स्टार प्लेयर्स हैं कोई बात नहीं अगर थोड़ा बहुत हो भी जाता है कोई डिसिप्लिन का इशू तो उसको इग्नोर कर दिया जाए तो उसमें वो चीज वो इन चीजों को वो बड़ा सीरियसली देखते हैं और यही हमारा बिल्कुल उससे बरक्स आ रहे हैं हमारी टीम की सिलेक्शन पे मेरा ख्याल पिछले एक महीने से बात हो रही थी स्पेशली जब इन्होंने अनाउंस की उस डे वन से लोगों ने क्रिटिसाइज करना शुरू किया किसी आम से बंदा स्ट्रीट में जो बंदा है उसको भी अंदाजा था कि आज जो बंदे ये लेकर आए हैं जो स्क्वाड ने अनाउंस किया है इस स्क्वाड के साथ ये लोग चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं परफॉर्म कर सकते दुनिया की बेहतरीन टीमें इसमें हिस्सा लेती हैं बट स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मेट है आठ टीमें हैं चार के ग्रुप्स में डिवाइड होती हैं आपके पास मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है लेकिन उन्होंने बावजूद इसके कि टाइम था चेंजेस ला सकते थे ठीक है गलती हो जाती है आप उसको ठीक करें कोई चेंजेस नहीं लाए और हाल हमने देख लिए थे
अच्छा ये जो अफगानिस्तान में जनाब कल फायरवर्क्स किए हैं ओहो हो क्या जबरदस्त तो कोचिंग तो जनाब यूनुस खान कर रहे हैं इनकी तो क्या कहना चाहते हैं टीम के बारे में लेकिन मुझे लगता है टीम में टैलेंट भी है शायद
नहीं टैलेंट बहुत है और उन्होंने देखी कंसिस्टेंसी जॉनाथन ट्रॉट उनके कम से कम तीन चार सालों से मैं देख रहा हूं कि उनके कोच हैं बड़े कोचिंग एबिलिटीज है मुझे लगता है उनकी ज्यादा बेहतर है बने वो प्लेयर्स के बड़े अच्छे बैट्समैन थे लेकिन ऑर्डिनरी से प्लेयर था बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था लेकिन अफगानिस्तान टीम को वो एक ऑल लेवल पे लेकर आ गया है और फिर अगेन क्रेडिट गोज टू देयर बोर्ड टू देयर मैनेजमेंट जॉनाथन ट्रॉट पिछले तीन चार सालों से लगा है मेहनत कर रहे हैं वो अपनी जगह है बाकी वो लोग चेंज करते रहते हैं कभी बॉलिंग स्पेशलिस्ट ले आते हैं अभी यूनुस खान को लाए हैं एज अ बैटिंग कोच तो आपने देख लिया है उनकी बैटिंग काफी बेहतर रही है ददरान ने 177 किया अगेंस्ट अ स्ट्रांग बॉलिंग अटैक लाइक इंग्लैंड तो क्रेडिट डेफिनेटली गोज टू द मैनेजमेंट यूनुस खान फॉर हिज बैटिंग कोचिंग एंड जॉनाथन ट्रॉट फॉर ओवरऑल कोचिंग।
अच्छा, अब कल अफगानिस्तान का मैच जो है वो ऑस्ट्रेलिया से है, तो वो तो बड़े कॉन्फिडेंट हैं। वो कहते हैं ऑस्ट्रेलिया क्या चीज है, इंग्लैंड को हराया हमने इतने बड़े मार्जिन से, तो हम ऑस्ट्रेलिया को भी हरा सकते हैं। लेकिन ऑन पेपर आपको कौन सी टीम स्ट्रांग लग रही है, ऑस्ट्रेलिया या के अफगानिस्तान?
मेरी कैप से आपको अंदाजा तो होगा कि मेरी सपोर्ट किसके साथ है।
मेरी भी उन्हीं के साथ है जो आपकी कैप है।
लेकिन
अच्छा, मैं अफगानिस्तान को वोट डालूंगा।
ओके ठीक। मैं खुद चाहूंगा कि अफगानिस्तान जिस तरीके से वो खेल रही है, तो सब दोनों टीमों के अच्छे चांसेस हैं। अफगानिस्तान में आई वुड से ऑन पेपर अफगानिस्तान को एज है इस वक्त, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के तीन मेन बॉलर्स प्लेयर्स उनके साथ नहीं है। बिल्कुल नया बॉलिंग अटैक है, बैटिंग भी उनकी एक दो सीनियर प्लेयर्स पर ज्यादा रिलाय करती है, लेकिन जो सबसे अच्छी चीज ऑस्ट्रेलिया की वो ये है कि वो फाइट करते हैं। और श्रीलंका से वन डेज में व्हाइट वॉश होने के बाद चैंपियंस ट्रॉफी में आए बगैर अपने स्टार प्लेयर्स के, पहले ही मैच में उनको इंग्लैंड ने 350 मारा और कॉन्ट्री टू एक्सपेक्टेशंस उन्होंने वो स्कोर पूरा किया, तो वो फाइट करते हैं। तो ये तो है उनकी एडवांटेजेस। अफगानिस्तान ऑब्वियसली मैंने जैसे कहा कि ऑन पेपर उनसे बेहतर है, आपकी इनकी बैटिंग अच्छी जा रही है, बॉलर्स इनके जबरदस्त हैं, ऊपर इनके दो फास्ट बॉलर हैं, फजल फारूकी है, उमर जई है, उसके बाद तीन एक्सपीरियंस स्पिनर इनके पास हैं, दो एक्सपीरियंस हैं, एक तो यंग है राशिद खान है, फिर नबी है, वो इस एज में आके अभी भी जबरदस्त बॉलिंग करे, अच्छा ऑलराउंडर है, फिर नूर है, वो क्योंकि लेफ्ट आर्म चाइना मैन स्पिनर है, तो अगर वो खेले तो डेफिनेटली ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को प्रॉब्लम दे सकता है। तो ऑन पेपर आई वुड से अफगानिस्तान के पास एज है, लेकिन लेट्स सी द रीजन व्हाई मैं चाहता हूं कि ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीते और आए, क्योंकि आगे फिर सेमीफाइनल्स भी आ रहे हैं और सेमीफाइनल में जो टीमें आएंगी मुझे लगता है कि अफगानिस्तान उनके साथ इतना अच्छा ना खेल सके, तो एक क्रिकेट की पॉइंट ऑफ व्यू से मैं चाहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम आए सेमीफाइनल्स में ताकि अच्छा मुकाबला हो।
बिल्कुल, मैं भी यही चाहती हूं, और जो है वो ऑस्ट्रेलिया की बड़ी जबरदस्त किस्म की टीम है। अच्छा, हमारी टीम के बारे में तो गवास्कर ने भी कह दिया है कि अब तो हम इंडिया की बी टीम भी भेज देंगे ना, तो वो भी पाकिस्तान को हरा के आ जाएंगे। अच्छा, तो पाकिस्तान अब तो जनाब अर्ली एग्जिट उसका हो गया चैंपियंस ट्रॉफी से, और आज तो बड़े बड़े बयान भी आ गए हैं, राणा सनावला भी कह रहे हैं जी हम तो अब पीएम से बोलेंगे, वो खुद इन चीजों को देखें, और बाकी प्लेयर्स सारों ने भी बड़ा कह दिया है कि जी ये तो मामला सही नहीं चल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जो इस वक्त एग्जिस्टिंग स्क्वाड है पाकिस्तान का, इसमें पहले भी वैसे तो कहा था मोहसिन नकवी साहब ने बड़ी जी मैं जो है वो क्लीन अप करूंगा और सर्जरी करूंगा, सर्जरी कोई की लगती नहीं है, अगर सर्जरी की होती तो तैयब जैसे लोग कैसे लाते और सुफियान जैसे स्पिनर को बाहर कैसे बिठाते, लेकिन अब तो लोग क्वेश्चन उठा रहे हैं बाबर और रिजवान पे भी। क्या ख्याल है आपको, इनको अब खेलना चाहिए या नहीं, जरा बाहर बिठाना चाहिए थोड़े दिन इनको?
आपका देखिए, पहले आपने कहा कि अब ये लोग प्लान करना चाहते हैं, अगर आपको याद हो सिमिलर मैच सिचुएशन और पोस्ट मैच जो पोस्ट टूर्नामेंट जो हालात थे वो पिछले साल हमारे सामने हमने देखा T20 का जो वर्ल्ड कप यहां यूएस और कैरेबियन में हुआ था, जब पाकिस्तान टीम यूएस से हारी और फिर टूर्नामेंट से भी बाहर हो गई, तो हमने कुछ इसी किस्म के हालात देखे थे। लोगों में बड़ा मायूसी थी, गालियां पड़ी थी और कहा था कि चेंज करेंगे वो करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल कुछ शायद एक आध प्लेयर अब नहीं नजर आता, लेकिन बाकी अगर आप देखें तो थोड़ी सी चेंजेस होने के बाद वही टीम वापस आ गई, वही सिलेक्शन क्राइटेरिया और वही हम वहीं खड़े हैं जहां पहले हम खड़े थे। तो ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता कि अब इस तरह भी होगा यही कि फिर किसी एक सीरीज के लिए कुछ प्लेयर्स को बिठा दिया जाएगा, फिर दोबारा वो कोई परफॉर्म करेंगे या किसी और बैकडोर से फिर उनको ले आया जाएगा, तो वो कुछ ज्यादा कुछ होने वाला है। और फिर यही बयान देना कि जी हम पीएम को कहेंगे कि आके कुछ करें, तो मतलब यहीं से आपका काम देखे ना गलत हो जाता है। अब पीएम का या इंटीरियर मिनिस्टर का क्या काम है क्रिकेट के साथ, ये चीजें ऐसे नहीं ठीक होने वाली, ना ये एक सीरीज में और एक साल में ठीक होती, इनको बड़ा टाइम लगता है चेंज होने में, ठीक होने में। वो एक कल्चर चेंज होता है, एक माइंडसेट चेंज होता है, कोई ऊपर से कोई प्रोफेशनल्स आते हैं, कोई चीज बेहतर करते हैं, तो कुछ चीजें होती है, ऐसे कुछ नहीं होती और ना कुछ होंगी।
हाँ, जैसे कि बीसीसीआई में था, ऊपर बैठा हुआ तो जय शॉ था, लेकिन जो उनका क्रिकेट बोर्ड था उसके अंदर तो सारे क्रिकेटर्स थे और वो सारे डिसीजंस बनाते होते थे, तो वो जय शॉ तो बस ऐसे ही मैनेजमेंट के लिए था ना, कि वो बोर्ड के लिए बस पैसे जैसे जमा करने, बाकी पॉलिसी मेकिंग में तो वो नहीं था, तो इनको भी कुछ ऐसा करना पड़ेगा। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको नहीं लगता कि जैसे मैंने अभी आपसे क्वेश्चन भी किया कि ये रिजवान और बाबर जो है जरा इनको थोड़ा बिठाना चाहिए, जैसे कल रिकी मार्टिन भी कह रहा था कि जी वो ये जिस वक्त टाइम होता है ना, जब टाइम फंसा हुआ होता है, जब प्रेशर होता है, बड़ा प्लेयर वो होता है जो उस वक्त अपने फिर जो है वो दिखाता है, अपनी बड़ाई दिखाता है। तो जैसे कि उसने कोहली की एग्जांपल दी, कि जैसे कोहली ने जो है वो दिखाया है, तो ये बड़े प्लेयर तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं और जो है फिर भी बस चले ही जा रहे हैं। तो क्या इसमें यंगस्टर्स को, यंग ब्लड को, खास तौर पे जो व्हाइट बॉल, ये जो सीरीज है ओडी है, इसके अंदर लाने की जरूरत नहीं है आपको? और अगर लाने की जरूरत है तो आप किन के नाम लेंगे कि किन को स्क्वाड में लाना चाहिए?
देखिए, मैंने पहले भी जिक्र किया कि हमारी एक बड़ी क्रिकेट में खासकर बोर्ड की बड़ी जबरदस्त खूबी है कि वो एक अच्छी चीज जब होने लगती है तो उसी को वहीं पे जाके किस ना किस तरीके से उसको वो खराब कर देते हैं। आपके पास बेहतरीन प्लेटफॉर्म जो चैंपियंस ट्रॉफी के बना था वो उस स्क्वाड के साथ बना था जिसने साउथ अफ्रीका में परफॉर्म किया, जिसने ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म किया, दोनों टफ सीरीज जीत कराए, टफ कंडीशंस में जीत कराए। उसमें जो यंगस्टर्स थे उनको बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस मिला, उनको हौसला मिला और वो वही स्क्वाड ये लेकर आते, सवाए सैम अयूब अनफॉर्चुनेट इंजरी के बाकी उसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं थी, वही स्क्वाड खिलाते, आप देखते शायद नतीज बेहतर होते डेफिनेटली। और अगर ऐसे इतने अच्छे ना भी होते तो कम से कम ये मायूसी और ये जो हाल अभी है, जो इनको गालियां भी पड़ी हैं, कम से कम ये तो ना होता ना। फाइट करते और उससे हारते तो आपको अच्छा भी लगता है। वो बड़ा कल के जुनकाई में जर्नलिस्ट इंडिया के, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, उसने कहा यार क्रिकेट मैच हारो तो हारो लेकिन कम से कम दिल तो जीतो। तो इन लोगों से तो वो भी नहीं हो सका। तो ये वाइट, ये यंग ब्लड बिल्कुल खिलाने की जरूरत है, लेकिन फिर क्वेश्चन ये है कि वो किस एट द कॉस्ट ऑफ हूम, वो यंग ब्लड या यंग लड़के जो आएंगे, फिर वो आप में अगर इतना हौसला है और आप इतने टफ डिसीजन ले सकते हैं कि अपने सीनियर प्लेयर्स को बिठाएं और फिर उनको लाएं और कम से कम एक दो तीन सीरीज के लिए ना। आप एक सीरीज में तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यंग ब्लड आए और वो ग्रूम हो जाए। सैम अयूब की मिसाल हमारे सामने, सैम अयूब को कम से कम 3-4 साल लगे तब जाके वो इस लेवल पे पहुंचा है। तो अगर आप में इतना हौसला है कि आप इन सीनियर प्लेयर्स को कम से कम 6 महीने, साल, 2-3 सीरीज के लिए बाहर बिठा सकते हैं तो डेफिनेटली लें। जब आप देखेंगे चेंज आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा।
अच्छा, नहीं लेकिन मैंने आपसे ये भी पूछा था कि कोई नाम आप क्या सजेस्ट करते हैं कि स्क्वाड में होने चाहिए?
वो एक दो आपने
सुफियान का नाम लिया था मैंने।
हाँ जी, सुफियान डेफिनेटली, वो एक स्पिनर हमारे पास है, हमारे पास है, मयूब वापस आ जाएगा, उसको आप खिलाएं। फिर एक अब्बास अफरीदी बॉलिंग में अच्छा है, उसको डेफिनेटली खिलाया जा सकता है। एक और लेफ्ट हैंडर था जो सीरीज में था, फिर मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, उनको आप ला सकते हैं। फिर हमारे पास एक मिडिल ऑर्डर में आए थे, एक यंग से मैं नाम भूले, लेकिन वो एक अच्छा ऑलराउंडर था, हार्ड हिटिंग बैट्समैन भी था और एक बेहतरीन फील्डर भी था। ये 3-4 नाम तो हमने देखे थे, बड़े अच्छा खेले थे इस सीरीज में और इनको वापस लाना चाहिए। ये सारे हैं हमारे पोटेंशियल, बड़े बेहतरीन प्लेयर्स हैं सारे के सारे।
गावस्कर ने क्योंकि कल आया कि हालांकि तुम लोग जो है वो करवाते हो, पीएसएल भी करवाते हो, लेकिन पीएसएल से भी तुम्हारे पास कोई अच्छे जो है बैटर नहीं आ रहे हैं, तो मतलब सारी दुनिया का ही कंसर्न जो है आ रहा है। वो कहते हैं जी कि पहले तो बड़ी जो है वो, जैसे कि हमारा जो क्रिकेट होता था बड़ा प्राइज्ड पोजेशन होता था हमारा नेशन का, ले उसमें बड़े जबरदस्त स्टार और बड़े बड़े नाम होते थे, अब कोई भी नहीं आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, ये थोड़ा हार्श है? क्योंकि मुझे पहले भी किसी ने कहा कि जी ये बड़े दो सितारे बाहर बैठ जाएंगे तो बाकी टीम क्या खेलेगी, बाबर एंड रिजवान, या मुझे, या आपको लगता है कि जरा इनको बिठाना चाहिए 6 महीने बाहर?
देखिए, बिठाना का ये मकसद नहीं कि जी आपने परफॉर्म नहीं किया तो सजा के तौर पे आप बाहर बैठ जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी प्लेयर को एक दो सीरीज के लिए या एक आध सीरीज में ड्रॉप करते हैं तो उसका एक प्लान भी होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जी आपका मेन टीम से ना खेल रहा हो फिर जाके किसी लीग में खेलना शुरू कर दे, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। आप अपने उनको डोमेस्टिक सर्किट में भेजें, अगर आपने बिठाना ही है तो फिर इस कंडीशन पे उनको बाहर करें कि जी जाए डोमेस्टिक में खेलें और डोमेस्टिक में लॉन्गर फॉर्मेट में खेलें। ये 2020 की लीगें खेल खेल कर भी हमारे काफी नुकसान हो गया है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट तो इफेक्ट हो ही रही है, अब तो व्हाइट बॉल क्रिकेट भी इफेक्ट होना शुरू हो गई है। आपको 50 ओवर्स के बैक टू बैक मैचेस खेलना ही प्रॉब्लम हो रहे हैं। अगर आपको याद हो पाकिस्तान में अभी लोकल कप हुआ था जिसमें सारी रीजनल टीमें खेली थी, उसमें शुरू के मैचेस 50 ओवर्स कोई टीम पूरा खेल ही नहीं पा रही थी। तो ये भी एक फैक्टर है। तो अगर आपने इन प्लेयर्स को बिठाना है तो इनको डोमेस्टिक में खिलाएं, इनको 3 डेज वाले जो मैचेस होते हैं उसमें खिलाएं, इनके अगेंस्ट इनके साथ जब बाकी लोकल प्लेयर्स खेलेंगे उनको भी अच्छा लगेगा कि एक स्टार प्लेयर उनके साथ, उनके डिपार्टमेंट से खेल रहा है, उनकी रीजन से खेल रहा है, फिर उनको लोकल में सर्किट में डेफिनेटली खिलाएं, तब फायदा होगा आपको।
ठीक है साकिब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉमेंट्स, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। तो हम फिर भी इंशाल्लाह जब भी टाइम मिलेगा हम आपके साथ जुड़ेंगे, एंड रमदान करीम टू यू, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह जरूर जो टूर्नामेंट्स होंगे हम आपके साथ जुड़ेंगे। थैंक यू फॉर नाउ,
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ साकिब खान, स्पोर्ट एक्सपर्ट। और जैसे कि शादी आप भी कह रही थी, ये भी बात कर रहे थे, एक ही मिनट में बात खत्म करेंगे फिर हम अपने आगे सेगमेंट में चलेंगे। जैसे साकिब जावेद ने कहा ना कि जनाब हमारे पास बेस्ट प्लेयर यही थे, अभी भी आपने साकिब से भी सवाल पूछा कि जी किसको, मतलब ठीक है आप कह रहे हैं जी टीम सिलेक्शन सही नहीं हुई, बेस्ट पॉसिबल इस वक्त जो आपके पास है उनमें आप एक पैरेलल कुछ छह खिलाड़ी या पांच खिलाड़ी आप लिख लें और फिर किसी दिन हम इस पर बात कर लेंगे भाई इनकी जगह इनको खिला देना था। तो ऐसा होता नहीं है, उन्होंने ठीक है मसाइल तो है इस पर कोई शक नहीं है, लेकिन जैसे कि बेस्ट अब साइन इंजर्ड हो गया, फखर जो है आउट हो गया, मतलब उसका भी इंजर्ड हो गया इस तरीके से, ठीक है आप जो मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं
इंडिया के खिलाफ मैच था, लोगों का कहना स्पिनर्स आने चाहिए,
बिल्कुल आने चाहिए, लेकिन शायद जी होता क्या है समटाइम बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि वो नहीं हो पाती, जानकर नहीं की जाती है, कभी कभी ऐसी भी मिस्टेक
क्योंकि
हो जाती
है। बात वही है साकिब वाली, और जो हम कह रहे थे कि जो आपका स्क्वाड बना हुआ था ना, जिसने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में रहा था, साउथ अफ्रीका को, जिम्बाब्वे को, वहां वहां जाके रहा था, उसी स्क्वाड को रखना चाहिए था, चेंजेस की जरूरत ही नहीं थी आपको, जब एक सेट स्क्वाड है
हम वो यही बात हो रही थी, कल भी मैं एक जगह देख रहा था तो कह रहे हैं जी पांच सालों में पांच चेयरमैन चेंज हो जाते हैं इस मुल्क में,
वो तो है ही है,
क्या टीम बनेगी,
हाँ टीम क्या बनेगी, और ये जो पॉलिटिकल बेताशा ये जो बोर्ड के अंदर भी जो है ना वो है, वो पॉलिटिक्स है, उसको भी खत्म होना
चाहिए। पॉलिटिक्स तो देखें हर दौर में रहेगी और हमेशा रहेगी,
लेकिन पीसीबी में नहीं होना चाहिए ना,
देखिए इंडिया में भी पॉलिटिक्स होती है, हमने कई बायोपिक धोनी पे भी देख ली और दूसरे अजहर पे भी देखी जो आ गई है हिस्सा है कि किस तरीके से पॉलिटिक्स इंडिया में उस वक्त भी मौजूद थी,
बोर्ड बोर्ड में जब गंगोली साहब भी थे, प्राइम मिनिस्टर